हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है शास्त्र, सर्विस टू शास्त्र, शास्त्रों की सेवा कैसे की जाए, है ना। तो शिलाश्री ठाकुर बचपन से ही, है ना, और स्कूल और कॉलेज के समय बहुत बड़े विद्वान थे, है ना, बहुत बड़े स्कॉलर थे। भगवद गीता पूरा याद था उनको, बहुत सारे वैष्णव सॉन्ग याद थे उनको, है ना। और केवल याद नहीं था, अगर कोई पूछता था तो उस पर समझाना, उस पर कॉमेंट्री देना वो ही बता सकते थे, है ना। और राइटिंग, लिखना और लेक्चर्स देना या लोगों से बात करना, तो उसमें हमेशा जो भगवान की कथा है, जो शास्त्रों की सेवा है, उसमें हमेशा व्यस्त रहते थे। और उन्होंने जो अलग अलग ग्रंथों पर टीकाएं लिखी है, तो उसमें एक श्लोक है चैतन्य भागवत में, उस श्लोक में करीब 88 शास्त्रों के कोटेशंस दिए सपोर्ट करने के। जैसे हम प्रभुपाद की कोई बुक पढ़ते हैं तो तात्पर्य में कुछ श्लोक आते हैं, है ना, वो रिलेशन बताने के लिए, संबंध। तो उन्होंने एक श्लोक है जिसमें 88 रेफरेंस दिए। उस समय लैपटॉप नहीं होते थे कि कॉपी पेस्ट कर दिया और हो गया। अगर आपको 88 रेफरेंस देना है तो आपको बहुत सारे याद होना चाहिए, तब आप उसको लिख सकते हैं। और हार्ड बाउंड है, सॉफ्ट बाउंड नहीं है कि सर्च कर लिए ये श्लोक यहाँ पर, ये यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, हो गया, है ना, ऐसे। और श्लोक पे उन्होंने 200 शास्त्र के वो दिए, 200 श्लोक, ये श्लोक के सपोर्ट में 200 श्लोक, है ना। और शिलाश्री ठाकुर जो पुस्तकों को देखते थे वो केवल एक ज्ञान है, उसका एक संग्रह है, उस तरह से नहीं देखते थे। वो देखते थे कि ये आचार्य स्वयं इन पुस्तकों में उपस्थित है। अगर हम पुस्तकों को पढ़ रहे हैं तो जिन आचार्यों ने लिखा है हम उनका प्रत्यक्ष रूप से संग कर रहे हैं। ये केवल एक पेपर, एक स्याही या कोई अक्षर नहीं है, स्वयं आचार्य अपनी वाणी में पुस्तकों में उपस्थित हैं। तो इसीलिए इन पुस्तकों को पढ़ना वो क्या है, आचार्यों की सेवा है, है ना। और इन पुस्तकों को दूसरों को देना, दूसरों को बांटना, उससे क्या हो रहा है कि आचार्यों की सेवा और बढ़े, जिससे हम और लोगों को जोड़ रहे हैं, जिससे आचार्यों का सेवा और बढ़ जाए। तो इस तरह से वो आचार्यों की सेवा के लिए, आचार्यों के संग के लिए पुस्तकों को पढ़ना, और पुस्तकों को वितरण किस लिए करना, जिससे और भी लोग आचार्यों की सेवा में संलग्न हो, है ना। और उनके जो शिष्यों में जो थोड़े इंटेलेक्चुअल होते थे, है ना, उनको प्रेरित करते थे कि आप शास्त्रों को पढ़िए। और उन्होंने अपने गौड़ी मठ में बहुत सारे कोर्स बनाए थे, भक्ति शास्त्री कोर्स है, भक्ति वैभव कोर्स है, तो कोर्स, अलग अलग कोर्स कंडक्ट किए जाते थे, है ना। और जो एकेडमिकली इतने आगे नहीं होते थे, इतने इंटेलेक्चुअल नहीं होते थे, उनके लिए वो बताते थे कि कम से कम आपको दशा मूल जानना है, दशा मूल तत्व। दशा मूल क्या है, इसलिए भक्तिमय ठाकुर ने 10 पॉइंट दिए हैं, 10 पॉइंट ऐसे हैं, ये सबको पता होना चाहिए गौड़ी मठ में, है ना। वो बताते थे कि दशा मूल क्या है, औषधि, उस औषधि को लेने से आपको किसी तरह का बुखार नहीं आएगा, अगर हम दशा मूल लेते हैं तो। उसी तरह अगर ये 10 पॉइंट पता है हमको वैष्णव फिलोसफी के, तो हम कहीं डेविएट तो नहीं हो रहे हैं, कहीं शिथिल तो नहीं पड़ रहे हैं, या गलत सिद्धांत तो नहीं चल रहा है, इन सब से बच के रहेंगे। तो जो इतना एकेडमिकली क्वालिफाई नहीं है, इतना ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं है, लेकिन सबके लिए ये दशा मूल तत्व जो है, 10 पॉइंट को जानना आवश्यक था, अति आवश्यक था, है ना। तो जो जिसका भी गौड़ी मठ में आता था, ये दशा मूल शुरुआत से ही वो जानना प्रारंभ कर देता। इसके बारे में कभी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी शास्त्रों की सेवा कैसे की जाए, उसके अलग अलग पॉइंट हैं। सबसे पहले है हरि कथा। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, कीर्तनिया सदा हरि, हमेशा कीर्तन करना चाहिए, है ना। तो श्रील सरस्वती ठाकुर का कीर्तन अधिकतर किसमें था, मृदंग करताल वाला कीर्तन नहीं था, उनका कीर्तन किसमें था, हरि कथा, लेक्चर्स या लोगों से मिलना, उसमें फॉर्मल इनफॉर्मल लेक्चर्स देना, या बृहद मृदंग प्रिंटिंग प्रेस है ना, कि बहुत सारी पुस्तकों की छपाई होगी और उन पुस्तकों का वितरण होगा है ना। तो हरि कथा के माध्यम से गुणगान हो रहा है। तो वो मेनली स्पीकिंग के लिए जाने जाते थे, सिंगिंग के लिए जाने जाते थे है ना। आजकल बहुत सारे कीर्तनिया हो गए ना, ऐसे मृदंग बजाएंगे, ऐसे करतार बजाएंगे, बिल्कुल कीर्तन मेला भी होता है तो उसमें मृदंग करतार और जोर से बज रहा है और जो अरे हम तो ऐसा लग रहा है कि पूरा आध्यात्मिक जगत में पहुंच गए और देव अवस्था में पहुंच गए हैं है ना। लेकिन श्री श्री ठाकुर का मेन क्या था, कीर्तन मतलब स्पीकिंग, बोलना, कीर्तन करना। जैसे सुखदेव गोस्वामी हैं तो उन्होंने कीर्तन किया, परीक्षित महाराज ने श्रवण किया, तो उनका मेनली जो कीर्तन था वो किस क्या था, स्पीकिंग है ना, हरि कथा। उन्होंने बोला है कि मैं अपने जीवन के प्रारंभ से ही इन कथाओं को सुनते आ रहा हूँ, इन कथाओं का चर्चा करते आ रहा हूँ और मुझे 50 साल हो गए हैं इस हरि कथा पे चर्चा करते हुए, और जीवन जब मैं जागा होता हूँ या सोया होता हूँ तब भी मैं हरि कथा का चर्चा करता रहता हूँ, और इस हरि कथा का चर्चा करते 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 मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा है ना। फिर उन्होंने बताया कि मैं अपने जीवन की अंतिम क्षण तक जो भी मैंने अपने गुरु से सुना है उसका मैं गुणगान करूंगा है ना। फिर बोले एक मुख क्यों होना चाहिए, हजारों मुंह होना चाहिए है ना, अनलिमिटेड माउथ्स, और इन हजारों करोड़ों मुख से जो अनंत भगवान के जो अनंत गुण है उनका अनंत समय तक गुणगान होना चाहिए इन हजारों मुख से। और उन्होंने बताया जैसे हम कृष्ण की अकेले पूजा नहीं करते, किसकी करते, राधा कृष्ण की। तो श्रीमती राधा रानी कौन है, भगवान की स्वरूप शक्ति है, तो इसीलिए हम केवल कीर्तन नहीं करते, हम क्या करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं। तो श्रवण क्या है, कीर्तन की स्वरूप शक्ति है। तो श्रीमती राधा रानी के थ्रू हम कृष्ण को अप्रोच करते हैं, उसी तरह श्रवण के द्वारा हम कीर्तन कर पाते हैं। तो जो अच्छा श्रवण करता है वो अच्छा कीर्तन कर पाता है, जिसने अच्छा श्रवण नहीं किया है वो अच्छा कीर्तन नहीं कर पाता है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद बताते थे क्योंकि मैंने अपने गुरु महाराज से श्रवण किया इसीलिए मैं अभी कीर्तन कर पा रहा हूँ है ना। तो कई लोग ऐसे जप करना है या कीर्तन में शामिल होना है तो वो अच्छा लगता है, क्योंकि भारत में अधिकतर पुण्यशाली लोग हैं तो जप करेंगे तो अच्छा लगे, लेकिन सुनना पसंद नहीं है, सुनने में नींद आ रही है या सुनने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, जप कर सकते हैं लेकिन फिलोसफी समझना या पुस्तकें पढ़ना उसमें रुचि नहीं है। एक क्या हो जाता है, रिचुअल बन जाता है, एक अनुष्ठान बन गया, हाँ बस जप करना, माला खत्म करना। लेकिन माला कब अच्छी तरह होगी, जब श्रवण अच्छी तरह होगा। तो जैसे राधा कृष्ण, कृष्ण की अलग अकेले सेवा नहीं होती, राधा कृष्ण की होती, उसी तरह अकेले कीर्तन ही होता है, श्रवण और कीर्तन होता है। राधा कृष्ण की स्वरूप शक्ति है, उसी तरह श्रवण कीर्तन का स्वरूप शक्ति है। फिर और उनकी जो प्रवचन होते थे उसमें जो भाषा थी वो काफी क्लिष्ट होती थी, क्लिष्ट मतलब जो शास्त्रों से इतने ज्यादा फेमिलियर नहीं है उनको बहुत कठिन लगता था है ना। इवन अगर बंगाली में लेक्चर देते थे तो जो बंगाली अच्छी तरह जानता है उनको भी समझने में बहुत दिक्कत होती थी है ना। तो कुछ लोग बोलते थे बाहर के लोग कि आप बंगाली में लेक्चर दे रहे हैं, इंग्लिश में दे रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब आपकी भाषा समझ में नहीं आ रही है ना। तो बोलते थे कि मैं तो ना बंगाली में दे रहा हूँ ना इंग्लिश में दे रहा हूँ, मैं वैकुंठ की भाषा में दे रहा हूँ, और वैकुंठ की भाषा कौन समझ पाएगा जिसका सेवा भावना है, वही समझ पाएगा, और कोई नहीं समझ पाएगा। तो सेवा भावना होगी तो समझ जाओगे। फिर एक जब वो इस तरह से अलग अलग इंग्लिश शब्दों को यूज करते थे तो एक व्यक्ति ने बोला कि आप जब लेक्चर दें तो डिक्शनरी दे दिया करिए साथ में कि मैं थोड़ा चेक कर लिया करूं कि आप क्या बता रहे हैं। तो बोले कि मेरी डिक्शनरी जो है, मेरे जो गुरु महाराज है उनके 2 चरण हैं तो वो मेरी डिक्शनरी है, तो वो डिक्शनरी ले लीजिए तो आपको सारा हर कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी है ना। तो हम एक भौतिक इंटेलिजेंस से है ना कि बहुत हम एकेडमिकली बहुत अच्छे हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं, तो उससे हम शास्त्रों की शिक्षाओं को नहीं समझ सकते। उसके लिए क्या चाहिए? सेवा भावना चाहिए ना, सर्विस एटीट्यूड चाहिए। और उनकी जो लेक्चर्स थे वो काफ़ी लंबे लेक्चर देते थे और बोलते थे कि एक व्यक्ति को शुद्ध भक्त बनाने के लिए कई गैलन खून बहाना पड़ता है ना, गैलन्स ऑफ ब्लड। विदाउट स्पेंडिंग 200 गैलन्स ऑफ ब्लड इन प्रीचिंग हरिकथा टू ऑल इंडिविजुअल्स, दे विल रिसीव नो इम्प्रेशन। अगर कई गैलन खून नहीं बहाएंगे तब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इतना होने के बाद बावजूद भी फिर भी लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इवन दो वी डू दिस मैनी हियर्स रिमेन अनअफेक्टेड, इतना सुनने के बाद भी कई लोग प्रभावित नहीं होंगे, है ना। ऐसे भैंस होती है ना, भैंस के सामने हॉर्न बजा तो हिलती नहीं, तो कितना भी सुन लिया, कितने भी लेक्चर सुन लिए, लेकिन क्या होता है, अपनी जगह से हिलना ही नहीं, हम तो बांध के बैठे। ऐसे कर रवि पूछ रहा था कि कुछ डिवोटीज हैं वो हफ्ते में केवल एक ही दिन सुनते हैं, कुछ लोग रोज लेक्चर सुन रहे हैं, लेकिन जो हफ्ते में एक दिन सुन रहा है उनका प्रगति ज्यादा हो रहा है, और जो रोज सुन रहा है उनका इतना प्रगति नहीं हो रहा है। तो वो इसका ये उत्तर है कि हम सुन के भी नहीं सुन रहे हैं, है ना। फिर भी बोले, फिर भी हमारा क्या है, मैं हरि कथा बोलता रहूं, और कुछ लोग, दो तीन लोग इंटरेस्टेड लोग आएंगे, और ज्यादा लोग आएंगे भी नहीं, है ना। तो ऐसे एक आर्टिकल है शिला सरस्वती ठाकुर का, तो बता, वो अपनी विनम्रता बता रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है कि अभी हम जो प्रचार कर रहे हैं, हम किसी को बचाने नहीं आए, हम किसी को बचा नहीं सकते, या हम किसी को भगवत धाम नहीं ले जा सकते। बचाने कौन आए हैं? शिल प्रभुपात, शिला सरस्वती ठाकुर, भक्तिमय ठाकुर, वो बचाने आए। तो अभी हम सोचें कि उनका मैसेज तो बहुत टफ है, बहुत कठिन है, और उनको हम थोड़ा नरम करके, थोड़ा सा चेंज करके दे देंगे, तो उसमें हम क्या सोच रहे हैं कि सामने वाले को हमने बचाने का ठेका लिया, लेकिन हम किसी को नहीं बचा पाएंगे। हम किसी को, हम अपने आप को बचा लें वही बहुत बड़ी बात है। तो जो आचार्यों का संदेश है उसको यथारूप प्रस्तुत करना है, तब वो बच पाएगा, नहीं तो वो नहीं बच पाएगा। अगर हम यथारूप प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं तो हम तो गड्ढे में गिरे और सामने वाले को भी गड्ढे में गिरा दिया, है ना। तो इसीलिए यथारूप प्रचार करना क्यों जरूरी है, ये समझना कि हम सेवियर नहीं है, हम बचाने नहीं आए किसी को, हम क्या है, सेव्ड है। हम अगर वास्तव में बच गए इस भौतिक जगत से, तो हम समझ पाएंगे कि हम सेवियर नहीं है। सेवियर कौन है? महान आचार्य। हम यहां से वहां जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महान आचार्य वहां से यहां आते हैं हमको लेने के लिए। तो उनका जो संदेश है उसको यथारूप में प्रस्तुत करना। कितने लोग भी आए, एक आए, दो आए, कोई दिक्कत। सरस्वती ठाकुर बोलते थे, कोई भी नहीं है प्रवचन में, दीवालों को प्रवचन दो, कोई दिक्कत नहीं, दीवार सुनेंगे, है ना। एक बार प्रवचन दे रहे थे तो शिष्य लोगों ने चटाई बिछा रहे थे, तो उन्होंने चटाई बहुत थोड़ी सी बिछाई, तो उन्होंने बोला कि चटाई बहुत कम बिछाई है आपने, तो बोले बहुत कम लोग आएंगे प्रवचन सुने। बोले नहीं, चटाई सारी बिछाई, बहुत सारे देवी देवता भी आते हैं, है ना, ब्रह्मा जी हैं, नारद मुनि, बहुत सारे लोग आते हैं, है ना। तो वो जो आचार्य है वो दिव्य दृष्टि से देख पाते हैं। तो कोई बात नहीं, कोई सुनने आ रहा नहीं आ रहा, हमको तो यथारूप प्रस्तुत करना है ना। ऐसे श्री प्रभुपाद बताते हैं कि एक बार दिल्ली में चांदनी चौक में किसी ने शुद्ध घी का दुकान खोला, मिठाई का, तो कोई आता नहीं, क्योंकि शुद्ध घी क्या है, बहुत महंगा है, डालना सस्ता है, तो शुद्ध घी वाले कस्टमर क्या है, बहुत कम मिलेंगे, है ना। लेकिन कुछ कस्टमर तो ऐसे होंगे जो शुद्ध घी ढूंढ रहे होंगे, तो अगर शुद्ध घी की दुकान नहीं खोलेंगे तो जो कस्टमर है वो कहाँ जाएंगे, मतलब उनको जगह चाहिए। तो कई लोग हैं जो वास्तविक शिक्षा ही ढूंढ रहे हैं। तो अगर आचार्यों की यथारूप शिक्षा को प्रस्तुत नहीं करेंगे तो क्या मतलब, हम कैसे हो गए, हम समझ रहे हैं कि हम आचार्यों से ज्यादा बुद्धिमान है, हम ज्यादा स्मार्ट है ना। वो क्या हो जाएगी, गुरु अपराध हो जाएगा, गुरु अवज्ञा, जो तीसरा नाम अपराध है। फिर उसमें बताया है, जब वो इलाहाबाद में थे कुछ समय के लिए, तो घंटे घंटे लेक्चर देते थे, कई घंटे, सुबह से लेकर दोपहर तक, और बीच में दो तीन घंटे का गैप, और शाम से लेकर रात तक। और उन्होंने, उनको हारमोनिस्ट में बताया था His divine grace is accessible at all hours to persons of all conditions. He talked almost continuously during his stay at Allahabad to those who came to him. तो कोई भी आए, कोई मिलने आए, तैयार. क्या क्या डिस्कशन करना है ना. और एक्चुअली ऐसा उसका रेफरेंस नहीं पता है, लेकिन ऐसा आता है कि गौड़ी मठ ने एक बार अपनी जो मैगजीन है उसमें ऐसे इश्तिहार एडवर्टाइजमेंट निकाला है ना, कि जो भी इसको खाने की समस्या है, रहने की समस्या है, बेरोजगार की समस्या है, आ जाओ गौड़ी मठ में, हम खाना देंगे, रहने की जगह देंगे, पहनने के लिए कपड़े देंगे, कोई चिंता नहीं, आप रहो यहाँ पर और भगवान की सेवा करो. ऐसे ओपन एडवर्टाइजमेंट दिया और कोई भी नहीं आया. तो बोले कि कितने लोग, कितने भगवान से द्वेष करते हैं कि उनको जो बेसिक रोटी कपड़ा मकान चाहिए है वो हम उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, तब भी कोई नहीं आया. तो गधे की तरह बाहर काम करने के लिए तैयार है, मजदूर की तरह काम करने के लिए तैयार है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए कोई आने के लिए तैयार नहीं है ना. और एक बॉम्बे का एक न्यूज़पेपर था, उसमें रिपोर्ट आया, हिज डिवाइन ग्रेस गिव्स रेगुलर डिस्कोर्सेस फ्रॉम 4 PM टिल 8 PM एवरी डे. 4 बजे से 8 बजे तक रोज 4 घंटे लेक्चर देना, सोचिए. एक बार वो कलकत्ता से गुवाहाटी गए, बहुत लंबा ट्रेन का सफर था, और गुवाहाटी में जैसे ही उतरे तो वहाँ एक एडवोकेट मिला, वकील मिला, और उससे कई घंटे उन्होंने चर्चा की. तो एडवोकेट ने बोला कि अभी विश्राम का समय हो गया है, आप विश्राम कर लीजिए. तो बोले हरी कथा बोलना अपने आप में विश्राम है ना. अगर वैसे मैं विश्राम करने जाऊंगा तो नींद क्या है, नींद मतलब इग्नोरेंस, अज्ञानता, तो विश्राम नहीं है, वो अज्ञानता है. और हरी कथा करना ही वास्तव में विश्राम है, उससे सारी थकान चली जाएगी. हरी कथा बोलने से, हरी कथा सुनने से सारी थकान चली जाएगी, तो वो अपने आप में विश्राम. ऐसे श्रील प्रभुपाद एक जगह है कि एक कोटेशन है कि पूछना है कि अच्छा चैंटिंग मतलब क्या, अगर हमारे माला अच्छी हो रही तो उसका मतलब क्या है. तो प्रभुपाद बोलते हैं कि और ज्यादा जप करने का मन करेगा, हम जप करेंगे तो और ज्यादा जप करने का मन करेगा. ऐसा नहीं कि बस खत्म हो गई अभी 16 माला, दिन का कोटा हो गया बस, बहुत सिर भारी हो गया था अभी, 16 माला पूरी हो गई. फिर एक बार सरस्वती ठाकुर, ये सारे इंसिडेंट क्या है, कैसे उनको कथा में बहुत उनका रुचि था, स्पीकिंग में और सुनने में कितना उनका तीव्र रुचि था. तो एक बार वो बरामदे में घूम रहे थे रात में, और कोई शिष्य प्रचार से आया और अंदर इंटर हुआ गौड़ी मठ में. तो उन्होंने पूछा कि कौन है, कौन हूँ आप. तो उस शिष्य ने उत्तर दिया कि गुरु महाराज मैं हूँ. तो बोले मैं कौन, शरीर की आत्मा. और वहां से उन्होंने प्रारंभ कर दिया, काफी 1-2 घंटे तक वो डिस्कशन चला. और उनके जो प्रवचन होते थे उसमें लीलाएं बहुत कम होती थी, ज्यादातर क्या होती थी फिलॉसफी, तत्व का चर्चा होता था, है ना. अगर लीला की भी चर्चा होती थी तो उसमें क्या सिद्धांत क्या निकालना चाह रहे हैं उसके ऊपर वो चर्चा करते थे. और कभी कभी वैष्णव सॉन्ग आते थे तो वैष्णव सॉन्ग का अर्थ क्या है उसको वो एक्सप्लेन करते थे. और बताते थे कि अगर केवल लीला कथा चल रही है तो वो क्या हो जाएगा, एक स्पिरिचुअल इंटरटेनमेंट हो जाएगा, और जो सुनने वाले हैं वो उस चीज के लिए भी योग्य नहीं है, उससे ऊपर का चीज उनको सुनाया जा रहा, तो वो क्या है सहजिया में चेंज हो सकते हैं अगर हम ज्यादा लीलाओं की चर्चा करेंगे, है ना. और ऐसा आजकल हो भी रहा है कि लीला कथा बहुत चर्चा हो रही है, है ना. कन्हैया घूम रहे हैं, माखन खा लिया है, यशोदा माँ पीछे उनके पीछे पीछे जा रही हैं, तो बहुत मजा आएगा लीला में, बहुत मजा आ रहा है. फिर मूवी देखेंगे तो उसमें भी बहुत मजा आएगा, है ना. भगवान वृंदावन छोड़ के चले गए हैं तो आंखों में आंसू आ गए, और कोई मूवी देख रहे हैं उसमें कोई मर गया तो उसमें भी आंसू आ रहे हैं. तो ये क्या हो गया, जड़ रस. लीलाओं में भी क्या है, जड़ रस ढूंढ रहे हैं, है ना. तो इसीलिए ज्यादातर फिलोसफी चर्चा करते. और कई ऐसे बोलते थे कि ये श्री सरस्वती ठाकुर के रसिक भक्त नहीं है, ये तो ज्ञानी है, ये रसिक भक्त नहीं है, हमें तो रसिक भक्तों से सुनना है जिनमें, ये तो बहुत ड्राई है कि वो फिलोसफी, शरीर नहीं आत्मा है, भोग छोड़ना है, सेवा करना है, रस की बात नहीं, हम तो रस की चर्चा करेंगे, है ना। फिर उनकी कुछ स्टेटमेंट्स हैं हम देखते हैं। वो बता रहे हैं कि मेरे प्रवचन लंबे क्यों होते हैं, बता रहे हैं कि इतने लंबे प्रवचन मैं क्यों देता हूं। लोगों की बहुत सारी भूल धारणाएं हैं और मैं उन भूल धारणाओं को दूर करने का प्रयास करता हूं, इसकी वजह से मेरे लेक्चर लंबे हो जाते हैं। मैं बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूं लेकिन जो सुनने वाले हैं उस सब चीजों को एक साथ ग्रहण नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कुछ टुकड़ों में धीरे धीरे करके मैं बताता हूं। लेकिन भूल जाना इतनी है, इसकी वजह से मेरे जो प्रवचन है वो लंबे हो जाते हैं। फिर वो बता रहे हैं कि भक्ति में कोई प्रवेश नहीं कर सकता जब तक ये नहीं समझे कि इस संसार में जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी थ्योरीज हैं, वो सब निरर्थक है, है ना। नो वन कैन इंटर इंटू भक्ति विदाउट अंडरस्टैंडिंग द वर्थलेसनेस ऑफ ऑल व्यू पॉइंट्स एंड थ्योरीज ऑफ दिस वर्ल्ड। जो भी सिद्धांत है, जो भी संसार में चल रहा है, सब व्यर्थ है, सब निरर्थक है, इसको समझे बिना कोई भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकता है। फिर उनके तिरुभाव से पहले जब वो पुरी से जा रहे थे तो उनके एक शिष्य थे जदुमणि पटनायक, उन्होंने पूछा कि आप अभी जा रहे हैं पुरी छोड़ के, तो अभी हम क्या करें, आपका क्या आदेश है। तो श्री सरस्वती ठाकुर ने उत्तर दिया कि रोज मठ में जाके भागवतम सुन लो, यही मेरा आदेश। और फिर श्री सरस्वती ठाकुर के जो लेक्चर्स होते थे, लेक्चर्स में हमेशा उनका कभी एकदम फ्रेश और नया कोई साक्षात्कार आता था और जो शिष्य है एकदम से भौचक के रह जाते थे कि ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। अब इतने समय से उनको सुन रहे हैं लेकिन अभी तक ये तो सुने नहीं था। जैसे स्टेटमेंट है, भक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ जगह कौन सी है, अरे आप सब ब्लैंक क्यों होंगे, वृंदावन। और कोई मायापुर, कुरुक्षेत्र इज द बेस्ट प्लेस फॉर भजन, ओनली बोगस पीपल फेवर वृंदावन। फिर वो बता रहे हैं हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज से ज्यादा सेवा किया, नरसिंहदेव का। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज से अधिक सेवा किया, नरसिंहदेव का। अच्छा है कि मंदिरों को तोड़ दें और बुक्स को प्रिंट कराएं, बेटर टू डिसमेंटल द टेम्पल एंड प्रिंट बुक्स। मैं इस संसार में एक कॉन्ट्रैक्टर की तरह नहीं आया हूं, उसमें बहुत सारे मंदिर बन रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आई हैव नॉट कम एज ए कॉन्ट्रैक्टर बट एज ए प्यून ऑफ श्री चैतन्य देव वाणी। चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है उसका एक प्यून, नौकर, चपरासी, उसके रूप में कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूं। फिर उन्होंने बताया कि हम लोग जो है श्रीमती राधा रानी की पूजा करते हैं, क्यों, क्योंकि कृष्ण से उनका संबंध है। लेकिन हम कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि उनका श्रीमती राधा रानी से संबंध है। हम कृष्ण की सेवा, गौड, जैसे वैष्णव मतलब विष्णु भक्त है ना, गौड़ी मतलब श्रीमती राधा रानी के भक्त, तो हम कृष्ण की सेवा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका संबंध श्रीमती राधा रानी से। वैसे वो ऐसे बोलते हैं एक जगह कि कृष्ण हमारा इतना इंटरेस्ट नहीं है, हम तो राधा रानी की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि कृष्ण का संबंध उनसे है इसीलिए हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो ये इसको एक्सप्लेन करेंगे तो एक घंटा हो जाएगा सब। तो ऐसे उन्होंने बोला कि जो कनिष्ठ अधिकारी है अगर केवल मंदिर में घंटी बजाता है तो तो वो जाना अच्छा है बजाय लाखों करोड़ों हॉस्पिटल खोलने के। लाखों करोड़ों हॉस्पिटल खोलने से श्रेष्ठ है एक कनिष्ठ अधिकारी अगर कोई मंदिर में घंटी बजाता है ना। फिर एक बार प्रवचन हो रहा था और प्रवचन में कोई व्यक्ति बीच में उठा और बोला कि मेरे प्रश्न है, तो सरस्वती ठाकुर बोले कि अभी हरि कथा चल रही है, आप डिस्टर्ब मत कीजिए, आप प्रश्न को रखिए और बाद में पूछिएगा। फिर जब पूरा प्रवचन पूरा हो गया तो उन्होंने बोला ठीक है आप प्रश्न पूछिए, तो बोले वो तो मैं भूल गया। तो उन्होंने बोला कि अगर आप भूल गए इसका मतलब आपका प्रश्न क्या था, जस्ट एक अपनी जिज्ञासा को शांत करना था, ना कि वास्तव में समझना था कि मुझे जानना है। एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ना लोग, ये भी जान लें, वो भी जान लें, ये भी जान लें। इंक्वायरीज आर मीन फॉर बी मीनिंगफुल, नॉट जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। प्रश्न पूछना है कैसे, जिज्ञासा शांत करने के लिए नहीं, इसको हम अप्लाई कर सकें। फिर ये इम्पोर्टेंट है, आज जो स्कॉन में चल रहा है उसको देखते हुए, एक बार एक कोई सन्यासी थे तो कुछ ब्रह्मचारियों का क्लास ले रहे थे और उसमें बता रहे थे कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे करना है, लोगों के सामने कैसे बोलना है, उसकी टेक्निक बता रहे थे। जैसे आजकल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है ना कि आई टू आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए, है ना, खड़े हो तो एकदम स्ट्रेट हो, ऐसे आप लोगों ने भी कुछ किया होगा है, कराते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, है ना। तो ऐसे पब्लिक में कैसे अच्छी तरह बोलना है, अपने आप को प्रस्तुत करना है, उसकी ट्रेनिंग चल रहा था। तो सरस्वती ठाकुर ऊपर थे तो उन्होंने देखा कि ये ऐसा चल रहा है, तो उन्होंने रोक दिया। उन्होंने बोला नॉट बाय ट्रेनिंग कैन वन स्पीक हरी कथा, कोई प्रशिक्षण से हरी कथा नहीं बोल सकता, वन हु सर्व्स इज ब्लेस्ड टू स्पीक, जिसने सेवा की है उसको हरी कथा बोलने का आशीर्वाद मिलेगा। तो जो सेवोन्मुख है वो हरी कथा बोल सकता है, तो सेवोन्मुख नहीं है वो हरी कथा नहीं बोल सकता। कोई ट्रेनिंग से या रट्टा मार लेने से या केवल श्लोक याद करने से आप हरी कथा नहीं बोल सकते। तो जिसने सेवा की है, जिसकी सेवा भावना है, उसको भगवान मर्सी देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जिससे वो बोल सकता है। सेवन मुखे ही जीवा दो, इंस्पिरेशन विल कम ऑटोमेटिकली, प्रेरणा अपने आप आएगी अगर हम सेवा कर रहे हैं तो। फिर उन्होंने बताया कि जो प्रवचन देना है, एसेंस कि प्रवचन देने से एक और श्रेष्ठ क्या है कि वन टू वन बात करना है ना, वो ज्यादा इफेक्टिव है। कि कोई भक्त है, किसी की समस्या है तो उसके साथ अगर पर्सनल डिस्कशन कर रहे हैं तो उससे ज्यादा एडवांसमेंट होता है। तो लेक्चर्स में क्या इन जनरल क्या है फिलोसफी पता चल जाता है, लेकिन अगर पर्सनल डिस्कशन हो रहा है तो उससे ज्यादा और अच्छी प्रगति हो सकती है। फिर हम थोड़ा सा और लेंगे, इसको आप टुकड़े कर देना वहां में। अभी शास्त्रों को कैसे हम अप्रोच करें, द ट्रांसेंडेंटल अप्रोच टू स्क्रिप्चर्स। अभी हमने पढ़ा कि शास्त्र पढ़ना है और वो स्वयं और उनके कई शिष्य जो बहुत विद्वान बहुत स्कॉलर थे, अभी शास्त्रों को कैसे अप्रोच किया जाए, कैसे अप्रोच किया जाए। उन्होंने शास्त्र पढ़ने में बहुत जोर दिया लेकिन उन्होंने बोला कि किताबी कीड़े नहीं बनना है, बुक वॉर्म नहीं बनना है ना, कि केवल पन्ने पलटने पर और अपनी आंखों को किताबों पर ऐसे देखने पर केवल हम उसके संदेश को नहीं समझ सकते हैं। वो बार बार इस चीज को बोलते हैं सेवन मुख ही जीवा दो, जो सेवन मुख है वो शास्त्रों को समझ पाएगा, जो भोगन मुख है वो शास्त्रों को पढ़ते हुए शास्त्रों को नहीं समझ पाएगा, है ना। तो एक वो प्रवचन दे रहे थे, एक कॉलेज स्टूडेंट उठा और उसने चैलेंज किया कि अगर हमको पढ़ना लिखना नहीं आता तो कैसे शास्त्र पढ़ पाएंगे, इसीलिए हमको पढ़ना लिखना पड़ेगा ना, स्कूल जाना पड़ेगा, कॉलेज जाना पड़ेगा, अगर स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे, पढ़ना लिखना नहीं आएगा तो शास्त्रों कैसे समझेंगे, उसके लिए भी तो कुछ चाहिए ना। तो सरस्वती ठाकुर ने उत्तर दिया कि मैंने जो भी शास्त्र है, शास्त्रों का मर्म है, कैसे सीखा, अपने पिता हैं भक्ति मनोहर ठाकुर और अपने जो गुरुदेव हैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनके चरित्र को देखकर मैंने सारे शास्त्रों को सीख लिया, मुझे अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। केवल अपने जो गुरु हैं उनके चरित्र को, उनको सुनकर मैंने सारा सीख लिया। अब इसमें हमें यह समझना, ऐसा नहीं कि शास्त्र पढ़ना नहीं है, क्योंकि वो ऐसे चैलेंज कर रहा था कि बिना पढ़े लिखे तो शास्त्र समझे नहीं जा सकते, लेकिन बिना पढ़े लिखे भी शास्त्र समझ जा सकते हैं अगर जो प्रमाणिक गुरु हैं उनके चरित्र को और उनको सुनकर, वो भी इस पूरे शास्त्र को मन को सीख सकता है। और आगे हम देखेंगे कि कई ऐसे शिष्य थे जो इलिटरेट थे, अनपढ़ थे, लेकिन उनको शास्त्र बहुत अच्छे आते थे, श्लोक आते थे। कैसे? सरस्वती ठाकुर से सुन सुन के आ गए। उन्होंने बोला कि जो शास्त्रों की जो स्टडी है वो कैसे लेना, किस तरह से लेना चाहिए, सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए, खुद के शुद्धता के लिए शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, है ना। और प्रीचिंग के लिए, केवल पंडित बनने के लिए शास्त्रों को नहीं पढ़ना चाहिए, है ना, है ना। मतलब पंडित अगर हम उस सेंस में देखें कि ज्ञान तो बहुत है, लेकिन ज्ञान का क्या हो गया, अहंकार हो गया। वास्तव में पंडित मतलब तो शास्त्रों को शास्त्रों को क्यों पढ़ रहा है, शुद्धिकरण के लिए, और शास्त्रों क्यों पढ़ रहा है, जिससे प्रचार हो सके, है ना। हियर फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए प्योर डिवोटी योर गुरु विल टेल विच बुक्स टू रीड वन बाई वन। और पुस्तकें पढ़ना है वो भी पूछ के पढ़ना है, अभी ये पढ़ना है, अभी ये पढ़ना है, अभी ये पढ़ना है। ऐसे नहीं बहुत सारी पुस्तकें हैं, एक जिज्ञासा है, ये भी जानना है, ये भी जानना है, ये भी जानना है, और पढ़ लिए, है ना। और वो बता रहे हैं कि अगर हम बहुत सारी पुस्तकें पढ़ेंगे गुरु के निर्देश के बिना तो हमको कभी भक्ति नहीं होती। वो बता रहे हैं अगर पुस्तकें बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे तो प्राकृत सहजीय बन जाएंगे, अगर पुस्तकें पढ़ ही नहीं रहे तो सहजीय बन जाएंगे, है ना। और उन्होंने बोला कि ब्रह्मचारियों की पर्सनल लाइब्रेरी नहीं होना चाहिए, है ना, और बिना मैनेजर के इन्फॉर्म किए हुए कोई भी बुक स्टॉल से पुस्तक नहीं लेगा, है ना। फिर वो बता रहे हैं बाई इंटेंसिव स्टडी यू माइट बिकम ए पंडित बट नॉट मे बी नॉट ए डिवोटी, है ना। तो बहुत ज्यादा अध्ययन करने से आप पंडित तो बन जाएंगे लेकिन भक्त नहीं बन पाएंगे। तो साधु से सुनना वही सफिशियंट है, वही सबसे जरूरी। फिर वो आगे बता रहे हैं कि अगर हम शास्त्रों को पढ़कर, शास्त्रों को गलत तरीके से पढ़ रहे हैं और भगवान को देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो कैसा है, जैसे रात में सूर्य को देखना चाहते हैं हेलोजन लगा के। रात के समय अगर बहुत सारे हेलोजन, जितने भी करोड़ों हेलोजन लगा दिए लेकिन सूर्य नहीं दिखाई देगा, है, तो इसी तरह शास्त्र पढ़ रहे हैं लेकिन गलत मनोवृत्ति से, तो क्या होगा, भगवान के दर्शन नहीं होंगे। फिर वो एक उदाहरण बता रहे हैं कि एक भक्त ने इच्छा व्यक्त किया कि मैं संस्कृत सीखना चाहता हूँ, है ना। तो संस्कृत सीखने के लिए मैं कहीं जाऊँ, किसी यूनिवर्सिटी में जाऊँ, है ना। तो उन्होंने सरस्वती ठाकुर ने बताया कि अगर आप संस्कृत सीखेंगे और सेवा भावना नहीं है तो आप पथ भ्रष्ट भी हो सकते हैं, है ना, इसीलिए आप सेवा कीजिए और कोई समस्या नहीं, सब सीख जाएंगे। तो उन्होंने मठ में सेवा करना चालू किया और मठ में सेवा करते थे और सेवा बहुत ज़्यादा थी, मतलब बहुत ज़्यादा सेवा, लेकिन रात में क्या होता था, जो स्ट्रीट लाइट है उसमें पढ़ते थे, जब सब सो जाते थे गौड़ी मठ में तो स्ट्रीट लाइट में जाके पढ़ते थे, और दिन भर सेवा किया और स्ट्रीट लाइट में जाके पढ़ा। और बाद में क्या हुआ, उन्होंने एक एग्ज़ाम दिया संस्कृत का और उसमें बहुत अच्छे उनके मार्क्स आए, और ये जो गौड़ी मठ की मैगजीन था उसमें ये आया कि देखो सेवा करने से कैसे अपने आप ज्ञान प्रकाशित होता है, ये इन भक्त के जीवन से हम देख सकते हैं कि सेवा कर रहे हैं, दिन भर सेवा कर रहे हैं, रात में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, और उससे उन्होंने संस्कृत सीख गए बिना यूनिवर्सिटी जाए। तो सेवन मुखे ही जीवा दो, सेवा करने से अपने आप ही ज्ञान, हम बोलते हैं ना दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, तो दिव्य ज्ञान क्या, हृदय में प्रकाशित होता है, करेक्ट। और कोई भी, एक बार मदन मोहन मालवीय आए गौड़ी मठ में, उन्होंने कहा शास्त्रों को समझना है, तो उन्होंने कहा जो बर्तन रखे वो धोके आई है। अभी मदन मोहन मालवीय बहुत बड़े उस समय, है ना, लेकिन उनको पता था कि एक साधु के पास जाना है तो क्या व्यवहार होना चाहिए, तो मैंने ठीक है, उन्होंने बोला है तो कुछ कारण से बोला होगा। तो गए वो बर्तन धो के आए, फिर उन्होंने पूछा कि बताइए क्या प्रश्न है। तो उन्होंने अभी मुझे सारे उत्तर मिल गए, है ना। ऐसे कोई भी ऐसे स्कॉलर, कोई भी ऐसे पंडित बाहर से आते थे। एक वहां पर कोई रामदास थे जो बगीचा संभालते थे, है ना, पढ़े लिखे नहीं थे। बगीचे में क्यारियों में पौधे लगाना, फूल तोड़ना, फिर उसकी माला बनाना, भगवान को अर्पण करना, पूरा उनका दिन और पूरे समय हरे कृष्ण महामंत्र जप करते थे। इलिटरेट थे। तो एक जो आगे चल के सन्यासी बने, एक गृहस्थ थे, वो आए, है ना। तो वो उन्होंने पूछा कि सरस्वती ठाकुर, मैंने सुना आपके बारे में, आपके शिष्यों के बारे में, शास्त्रों का बहुत ज्ञान है, तो अब मुझे भी शास्त्र सीखना है। तो उन्होंने बोला कि एक रामदास है मठ में, तो वो आपको सिखा देंगे सारे शास्त्र। तो गए तो ढूंढा कौन है रामदास। तो भाजा रामदास तो बगीचे में काम कर रहे हैं। तो वो गए तो उन्होंने बोला कि श्री श्री ठाकुर ने बोला है कि शास्त्र सिखाने के लिए। तो रामदास विनम्र, उन्होंने बोला कि सर उन्होंने गलती से बोल दिया होगा, मुझे तो कुछ आता नहीं है, शास्त्र नहीं पता मुझे, तो आप जाइए। तो वो गए तो उन्होंने पूछा सीख क्या है कुछ। बोले उन्होंने तो ऐसा बोला है। बोले नहीं, आप फिर से जाओ और बोला कि मेरा आदेश से शास्त्र सीखा। तो फिर गए वो, तो बोला ठीक है आपको सीखना है तो मेरी थोड़ी मदद करा दीजिए, आप बगीचे में थोड़े पौधे खरपतवार निकालना है, है ना, पौधों का केयर करना है, पानी डालना है, उसमें आप मदद करा दीजिए। और ऐसे बीच में बता रहे थे कि ये मैं पौधे जो उगा रहा हूँ, ये फूल हैं और फूल को भगवान को अर्पण करता हूँ। तो इस तरह से पूरा उनका जो पूरा जो भाव था वो क्या है कि पूरी तरह से वो जो भगवान के लिए जो गार्डन है, भगवान के लिए बगीचा है, उसमें जो फूल है भगवान के लिए अर्पण करना, है ना। जब उन्होंने इस सेवा भावना देखा, सर्विस एटीट्यूड देखा, तो वो जो गृहस्थ आए थे तो समझ गए कि शास्त्रों का वास्तव में मर्म क्या है कि भगवान की सेवा करना, है ना। आहे तो की अप्रतिहत, इस तरह से। तो शास्त्रों को किस तरह से अप्रोच करना है, सेवा भावना से। अगर शास्त्रों को भी हम पढ़ रहे हैं केवल एक ज्यादा से ज्यादा हमको ज्ञान आ जाए और ज्यादा से ज्यादा उसकी वजह से हम अहंकार आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा शास्त्र। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शास्त्र हमको पढ़ने नहीं है, क्योंकि शास्त्र पढ़ना मतलब हम भगवान का संग कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद का संग कर, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ रहे हैं, मतलब प्रभुपाद का एसोसिएशन ले रहे हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि इफ़ यू वॉन्ट टू नो मी प्लीज रीड माई बुक्स, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हो तो मेरी पुस्तकों को पढ़िए। और प्रभुपाद बोले कि दीज पर्पट आर माई डिवोशनल एक्सटेसिस, है कि जो मेरे तात्पर्य हैं वो क्या है, मेरे भक्ति के उद्गार हैं। तो बुक्स तो पढ़ने ही है लेकिन सही भावना से। तो ऐसे और भी कई वृत्तांत हैं, तो अभी समय हो गया है। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है? सेवा से फ्रस्ट्रेट हो रहा है, सेवा में एक्सक्यूज दे रहा है और भाग रहा है,
इग्नोर कर रहा है, ये मेरा काम नहीं है, जिसका वो करेगा, तो जैसा भी पेंडिंग हो रहा है।
मतलब एक तो ये है कि उसको जो सेवा मिली है वो तो अच्छी तरह करनी है। ऐसे तो मतलब काफ़ी सेवा होंगी, जैसे मान लीजिए बेस है मंदिर में, तो ऐसे कई चीज़ें बिखरी होंगी। तो अभी हर व्यक्ति नहीं सोच सकता है कि जो भी बिखरा है वो मुझे करना है, वो करे तो बहुत अच्छा है, वो वास्तव में सेवा भावना है। लेकिन उसको जो सेवा अपॉइंट की गई है वो तो बहुत अच्छी तरह करना है। ये सेवा कोई मिल रही है उसको बहुत अच्छी तरह से इसको स्वीकार करना, ऐसे भागना या एक्सक्यूज देना वो नहीं होना चाहिए, वो सही सेवा भावना नहीं है। एक्चुअली भगवान को हमारी सेवा की भी जरूरत नहीं है। भगवान की क्या, भगवान के तो करोड़ों लाखों करोड़ों भक्त हैं गोलोक वृंदावन में, जो बहुत अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं। भगवान की सेवा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान देखना चाहते हैं कि उस सेवा भावना है कि नहीं, सेवा करने के पीछे मन मार के जबरदस्ती बस कर लिया, फायदा होगा नो डाउट, लेकिन ज्यादा फायदा कब होगा, जहां प्रॉपर सेवा भावना सर्विस एटीट्यूड से करेंगे। हर चीज है, भक्ति में कुछ भी है, चाहे हम बुक रीडिंग कर रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, या डीटी वर्शिप कर रहे हैं, कुछ भी है, उसके पीछे भावना क्या होना चाहिए, ये भगवान की सेवा के लिए निमित्त है। और कोई प्रश्न? हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज से ज्यादा सेवा, हिरण्यकश्यपु ने पूरे संसार में आतंक मचा दिया, है ना, सबको डरा दिया, ब्राह्मणों को मारना चालू कर दिया, गायों को मारना चालू कर दिया। तो जब इतना ज्यादा आतंक मचा दिया, पूरे संसार में आतंक फैल गया, जब उस समय नरसिंह देव आए तो सब, या नरसिंह देव बचाने आए। तो अगर हिरण्यकश्यप इतना नहीं करता तब भी नरसिंह देव नरसिंह देव ही है, कोई अंतर नहीं आया। लेकिन जब नेगेटिव रूप से हिरण्यकश्यप इतना बड़ा और जब नरसिंह देव आए तो उसका प्रभाव और बढ़ गया कि देखो भक्तों की भगवान रक्षा करते हैं। प्रहलाद महाराज को पहाड़ से फेंकने का प्रयास किया गया, उबलते हुए तेल में डालने का प्रयास किया, अग्नि में जलाने का, लेकिन हमेशा भगवान ने रक्षा किया। तो इस तरह से हिरण्यकश्यप ने ज्यादा सेवा किया नेगेटिव तरीके से। ऐसे रावण ने हनुमान जी से ज्यादा सेवा किया, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा, उसका परिपेक्ष समझना पड़ेगा। और कोई
सेवा कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब कर
सकते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं जी, वो बता रहे हैं कि एक्चुअली उससे एसेंस क्या निकल रहा है कि प्रीचिंग में नेगेटिव मेथड जो है, पाषण दलन, गलत सिद्धांतों को काटना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय लीलाओं को डिस्कस करना, इससे ये निकल के आ रहा है। जैसे उनके जो प्रवचन होते थे, इवन प्रभुपाद जी के प्रवचन है, तो समाज में क्या क्या गलत चल रहा है उसको पहले कटिंग करना है, तब भक्ति की महिमा एकदम प्रकाशित हो जाएगी कि यस ये भक्ति है। अगर हम बताएंगे नहीं कि स्कूल खोलना है जिसमें आधुनिक शिक्षा है, या हॉस्पिटल खोलना है जो शरीर के स्तर पर सोशल वेलफेयर है, ये गलत है, तो हम भक्ति को वास्तव में किस समझ पाएंगे? हम बोलेंगे सब अच्छा है, ये भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे, ये भी। तो भक्ति की जो महिमा है वो कैसे पता चलेगी? तो पहले जो नेगेटिव चीजें हैं, गलत चीजें चल रही, उसको काटना है, इससे महिमा पता चले। उसी तरह हिरण्यकश्यप में इतना आतंक मचाया तो वो नरसिंहदेव का गुणगान और बढ़ गया, है ना। और ऐसे जैसे वो कुरुक्षेत्र वाला, वो बता देता हूँ। तो कुरुक्षेत्र भजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह है, और वृंदावन कौन जाते हैं? हॉलो, ओनली बोगस हॉलो पीपल फेवर वृंदावन, है ना। तो अभी एक वो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, वो बता रहे हैं कि जहां सेवा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, अगर वहां किसी ने सेवा कर दी, मतलब सेवा तो हर जगह चल रही है, मान लीजिए एक सेवा है और 10 भक्त हैं तो सेवा हो जाएगी, और एक सेवा है कोई भक्त नहीं है, तो उस समय अगर किसी ने सेवा की थी तो वो बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा, है ना। तो वृंदावन में बहुत सारी सेवा चल रही, बहुत सारे भक्त हैं, तो वो तो सेवा कर ही रहे हैं भगवान कृष्ण की। लेकिन कुरुक्षेत्र में क्या हुआ, कुरुक्षेत्र में जब सूर्य ग्रहण हुआ तो सारे द्वारिकावासी, है ना, वृंदावनवासी आए, और भगवान उस समय कैसे थे, राजा के वेश में थे, है ना, राजसी वेश में थे। तो जो वृंदावनवासी हैं भगवान से मिलना चाहते हैं, लेकिन भगवान अभी क्या है, राजा के वेश में, तो डायरेक्ट नहीं मिल सकते, है ना। जब वृंदावन में है भगवान तो धोती है, मोर पंख है, ना, शरीर में पूरा मिट्टी है, और भगवान से मिलना जुलना बहुत आसान है, लेकिन राजा से मिलना इतना आसान है कि राजा से हर कोई नहीं मिल सकता है। तो अगर वहां पे कोई सेवा करता है, मतलब भगवान के भक्तों को भगवान से मिलाता है, तो वो ज्यादा बड़ी सेवा होगी बजाय वृंदावन में करने के। इसीलिए कुरुक्षेत्र ज्यादा श्रेष्ठ है इस परिप्रेक्ष्य में। उससे एक सिद्धांत निकल के आ रहा है कि जहां जाना जरूरत है वहां जाना सेवा करना, जहां ऑलरेडी सब सेट है वहां भी करना है उसको मेंटेन करने के लिए, लेकिन जहां जाना जरूरत है वहां जाना सेवा करना। तो इसलिए कुरुक्षेत्र में यहाँ जरूरत है, क्योंकि भगवान के भक्त भगवान से नहीं मिल पा रहे, और वृंदावन में तो ऑलरेडी वहाँ सेवा चल रहा है। तो ये उससे सिद्धांत निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वृंदावन कम जगह है, वो कंपेयर नहीं हो रहा है।